नमस्कार MGU, रहिए अपडेट।
मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रेडियो उड़ान में आप सभी का स्वागत है। हाय, दिस इज आलिंदी खेड़े। तो लिसनर्स, आज हमारी उड़ान टीम मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं ढेर सारे फ्यूचर वैद्यास जिन्होंने आयुर्वेद को अपना कैरियर चुना है। तो लिसनर्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे दैट दिस इज द ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ आर फ्यूचर वैद्यास। जिसने सभी को यहाँ पर मस्ती में झूमने को मजबूर कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम की और जानते हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजेश सक्सेना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एमपी में डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे।
सबसे पहला, जब आप चिकित्सा क्षेत्र में आए तो हर आदमी की, आम व्यक्ति की इच्छा होती है कि आप डॉक्टर बन रहे, तो आप जब वो पूछेगा तो आप उसको कुछ ना कुछ मेडिसिन बताएंगे। वो आपसे अपनी बीमारी पूछेगा, वो कहेगा कि इसका इलाज क्या होता है आयुर्वेद में। तो पहला ये कि प्रैक्टिस, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपकी रुचि है नहीं है, लेकिन आपको ये करना रहेगा आगे भविष्य में। तो आयुर्वेद का जो सबसे पहला स्कोप है, किसी समय केवल एक यही स्कोप होता था कि आप BMS कर लें, ग्रेजुएशन कर लें। MD भी बहुत कम होती थी, कॉलेजेस भी नहीं थे, लिमिटेड सीट होती थी। अब वो स्थिति नहीं है। तो पहला जो आपके पास विकल्प है वो है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं अपने जो थोड़ा बहुत अनुभव है उससे बताता हूँ। आप पहला सीधा सीधा अपनी प्रैक्टिस क्लिनिक, ये एक विकल्प है। लेकिन आज इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। कई आयुर्वेद हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन वाले कुछ हॉस्पिटल खुले हुए हैं। कोई नेत्र रोग की, आँखों की चिकित्सा कर रहा है, कोई स्पाइन की चिकित्सा कर रहा है, पंचकर्म चिकित्सा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के अपना काम कर सकते हैं। दूसरा एक एड ऑन ये हो जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे से कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं बड़े वहाँ पर होते हैं, आप वो कर लें। जैसे अभी मिस बारा बैठी हुई हैं, वो योग करती हैं, योग टीचर हैं, इस तरह के कोर्सेज होते हैं कि आप योगा टीचर का एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर लें। पंचकर्म में कोई कोर्स होते हैं, क्षार चिकित्सा एक होती है हमारे यहाँ, क्षार सूत्र चिकित्सा, उसके कुछ कोर्स होते हैं। आप डाइटिशियन के कुछ कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, वो आप कर सकते हैं। तो ये आप एक एड ऑन करके आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जा सकते हैं और आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप जो एड ऑन मैं बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ आप किसी दूसरा कोई एक साथ में कुछ और डिप्लोमा करके या सर्टिफिकेट कोर्स करके और आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप किसी क्लिनिकल साइड में आप चले जाएं, मेडिसिन या काय चिकित्सा होता है, सर्जरी, शल्य, शालाक्य, कौमार भृत्य, हमारे अभी सब शब्द आप सुनोगे अभी आगे जाकर के। तो इनमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके और क्लिनिकल साइड में आप जा सकते हैं, या दूसरा आप इसमें एकेडमिक साइड में भी आ सकते हैं।
अब हमारे बीच में मौजूद हैं चेक रिपब्लिक से आई एक स्पेशल गेस्ट बारा गैब्ज़लोवा मैम।
The Indian hospitality is absolutely amazing, and the kindness and support and generosity is so special. So everybody can practice Ayurveda, but that leads to also on the other side. Maybe it's easy, but on the other side, the quality of the training is not very good. So that's why I got the amazing opportunity to study with Veji, who is now a principal of this college, and do some practical training here. My time was absolutely amazing. So I would like. Cooperate. I hope that some cooperation can be done in the future. And my time in India is just coming to the end. I'm leaving on Sunday. So I would like to say thank you very much to all amazing Indian people because I had the best time ever. Like, thank you so much. And maybe soon.
और अब हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं मानसरोवर ग्रुप के सीईडी मिस्टर गौरव तिवारी जी। तो आइए अब सुनते हैं उनके व्याख्यानों के कुछ अंश।
विशिष्ट अतिथि महोदया डॉक्टर शोभना शुक्ला मैडम का मैं मंच पर स्वागत करता हूँ। तरह तरह के बच्चे, तरह तरह के बैकग्राउंड से, देश के अलग अलग गांवों से यहाँ पे आए हैं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की कोई ना कोई क्वालिटी है। आए एक दूसरे की क्वालिटी ढूंढने का प्रयास करते हैं और अपने समूह को एक और ताकतवर समूह बनाने का भी प्रयास करते हैं। आप सभी को पुनः मैं बधाई देता हूँ, आप सभी के अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मानसरोवर पर भरोसा किया, आपने उसको चुना, अपने प्यारे बच्चों को हमको सौंपा। और ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि आने वाले 4 साल आपके बच्चे के सबसे ज़रूरी 4 साल जो हैं वो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हम उनके इस फ्यूचर को संवारें। और आपकी जो हमसे उम्मीदें हैं उस पर खड़े उतरने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे।
अब हम हमारे मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर कर्नल एचआर गोहिल सर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे कुछ वक्तव्यों से एवं आशीर्वचनों से हमें अभिभूत करें।
आयुर्वेद बहुत पुराना शब्द है, शायद कई हजार साल पुराना। आप सबको इसके बारे में पहले भी बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है, मैं तो आपसे पता नहीं कितने दशक पहले से सुन रहा हूँ। आज से 5-6-7-8 हज़ार साल पहले दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हिंदुस्तान में होती थी। आप सब ने भी ये सुना होगा, पढ़ा भी होगा। दुनिया भर से, चाहे वो चीन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जिस ज़माने में कहते थे नई दुनिया, नई दुनिया मतलब आज का यूएसए, वो हो, वहाँ से हिंदुस्तान में ज्ञान लेने के लिए आते थे। और वहाँ ज्ञान देने वाले कौन थे? वहाँ टीचर्स नहीं थे, वहाँ गुरु थे। वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, वहाँ वैद्य थे। और वो डॉक्टर्स जो आज बन गए हैं, उस ज़माने के वैद्य और उस ज़माने के गुरु, वो जो शिक्षा देते थे वो शिक्षा दुनिया भर में सबसे बढ़िया थी। फिर ज़माना गया, वक्त ने करवट ली और अपने किसी कमियों के कारण से हिंदुस्तान में बाहर से लोग आए और उन्होंने यहाँ राज करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे वो गुरुकुल की शिक्षा हो, उन्होंने उसको दबाना शुरू किया। इसलिए नहीं कि इसमें कोई कमी थी, बल्कि इसलिए कि वो अपने ढंग की और अपने तरीके की शिक्षा यहाँ देना चाहते थे। एंड दैट्स हाउ यू ऑल हर्ड, जहाँ तक चिकित्सा का ताल्लुक है, एलोपैथी आ गई, आयुर्वेद को दबाया गया। और हमें इस 150, 200, 300 साल में ऐसा बना दिया कि हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को छोटा समझने लगे, क्योंकि जो वो कहते थे वो सच माना जाने लगा और वो इसी ढंग से बताते थे कि जो वो कहते वही सच है। फिर वक्त ने करवट ली, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यहाँ जो लोग इतने सालों से रहे वो इसका महत्व जानते थे, गुरुकुल की शिक्षा का भी और आयुर्वेद का भी। अभी पिछले 15-20-25 साल से आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में आयुर्वेद, आयुर्वेद की सिस्टम्स, योग, जिसके कि आजकल हम भी अंग्रेज़ी में योगा कहने लग गए हैं, उसका प्रचलन शुरू हुआ। और यकीन मानिए आज के दिन भारतवर्ष से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आयुर्वेद की पश्चिमी देशों में दी जा रही है।
अब हम बात करने जा रहे हैं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत सर से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में प्रवेश कर रहे नए छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं जो नए वर्ष में प्रवेशित जो छात्र हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैं ये देना चाहता हूं उन्हें कि आयुर्वेद जो है वो कोई दोयम दर्जे का शास्त्र नहीं है। यदि आपको उसका अच्छा ज्ञान है और यदि उसको आप प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से वह किसी अन्य विधा से बहुत ही महत्वपूर्ण विधा शामिल हो सकती है। आज अगर हम देखें विश्व में तो सबसे बड़ी जो मुश्किल चुनौती जो हमारे सामने है वह स्वास्थ्य रक्षण की है और स्वास्थ्य संवर्धन की है, क्योंकि चूँकि जो नया सिस्टम है जो स्वास्थ्य का वह एंटीबायोटिक्स और अन्य चीज़ों पर आधारित है, तो बहुत ही जल्दी बहुत सारी औषधियों का रेजिस्टेंस हमारे अंदर डेवलप हो गया है। तो इस दृष्टि को रखते हुए जब मेडिसिन का रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में हो गया है तब आयुर्वेद का जो मूल्य है अपने आप बढ़ जाता है, इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आयुर्वेद वह विधा है जो प्रकृति से प्राप्त औषधियों का हमारे ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है। अतः यह हमारे शरीर के लिए वैसे ही साथ में होती हैं जिस तरह से हमें आहार साथ में होता है, इसमें कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है। इसलिए ये मेरा कहना है कि आयुर्वेद में यदि कोई जो छात्र आए हैं निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल है, खूब मेहनत करें, खूब लगन से पढ़ाई करें, परिश्रम करें। धन्यवाद।
अब हमारे साथ मौजूद हैं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की डीन प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा राठी मैम। तो मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो इस विधा में प्रवेश कर रहे हैं, जो आयुर्वेद की विधा में प्रवेश कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि दूसरी पद्धतियों को छोड़कर किसी बच्चे ने आयुर्वेद में प्रवेश करना चाहिए?
वैसे तो आजकल सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है और एक आयुष पद्धति की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें कि न केवल यदि इसका अपनाया जाता है तो एक तो लाइफ स्टाइल के साथ साथ इसमें यदि रोग उत्पन्न हो भी जाते हैं तो वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं, कोई प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और ये आजकल हर लेवल का बच्चा जानता है और यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़े तक सभी जानते हैं। तो एक मेन इंटरेस्ट तो ये हो सकता है कि ये पता है कि आयुर्वेद जो पैथी है इट इज़ बेटर देन मॉडर्न मेडिसिन, इसलिए इसमें इस लेने के लिए आजकल बच्चे जागरूक हो गए हैं। देन इसमें आजकल जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हैं, लोग आयुर्वेद में आने के बाद रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, CCRAS में जा सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं आयुर्वेदिक कॉलेजेस, वहाँ पर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं, उनके रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हैं। हमारी मिलिट्री में भी अभी एक नई फाइल चल रही है जिसमें कि आयुर्वेद का उसमें प्रवेश दिया जाए। तो आजकल आयुर्वेद का प्रचलन पहले जैसा नहीं है कि इसको करने के बाद में केवल आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपने यदि प्रवेश ले लिया है तो यदि आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप इसमें आने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, चाहे प्रैक्टिस करें, चाहे टीचिंग में जाएं, चाहे रिसर्च में जाएं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, आप इसमें इसका डिपार्टमेंट होता है रस शास्त्र, यदि आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो करने के बाद एक आप अपनी खुद की फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और आप अपनी खुद की क्लिनिक पे उसको रख सकते हैं और डिस्पेंस कर सकते हैं।
नमस्कार, MGU, रहिए अपडेट।